मीका अध्याय एक। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी अपनी बाइबल में मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक खोल लें। अधिकांश भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के अनुरूप इसका आरंभ भी अपने ही प्रकार का है। मीका अध्याय एक पद एक। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मीका मोरेशेत वासी को पहुंचा, जिसको उसने शमरोन और यरूशलेम के विषय पाया। इस पद में भविष्यद् वक्ता अपना परिचय देता है कि वो मीका है और मोरेशेत नगर का रहने वाला है। वो अपनी भविष्यवाणी का समय भी दे रहा है, अतः स्पष्ट है कि वो यशया का समकालीन था। दूसरा राजा की ऐतिहासिक पुस्तक में हम देखते हैं कि आहाज दक्षिणी राज्य यहूदा के दुष्ट राजाओं में से एक था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। उसने देवताओं की उपासना के लिए यरूशलेम में ऊंचे स्थान बनवाए थे, परंतु हिजकिया एक अच्छा राजा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने धर्म सुधार का काम आरंभ किया। मीका द्वारा इस समय भविष्यवाणी करने का अर्थ ये हुआ कि उसकी भविष्यवाणी का समय वो था जब उत्तरी राज्य इसराइल अशूरों के द्वारा पराजित किया गया था। उत्तरी राज्य को जीतने के बाद अशूरों ने हिजकिया के समय में दक्षिणी राज्य को भी घेर लिया था, परंतु परमेश्वर के बीच में आ जाने के कारण वे सफल ना हुए थे। अतः ये वो समय था जब समरिया और उत्तरी राज्य इसराइल का पतन हो चुका था, इसलिए उसकी भविष्यवाणियां समरिया और यरूशलेम दोनों के लिए है। मीका अध्याय एक पद दो। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। अतः वो लोगों को पुकार रहा है कि वे कम से कम अब तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए कि परमेश्वर क्या शिकायत कर रहा है। मीका अध्याय एक पद तीन। क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वो उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। वो परमेश्वर के आने वाले दंड का वर्णन करने में उपमाओं का प्रयोग कर रहा है। मीका अध्याय एक पद चार। और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। अतः पहाड़ गल रहे होंगे, इसका कारण क्या है? मीका अध्याय एक पद पांच। ये सब याकूब के अपराध और इसराइल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या समरिया नहीं? समरिया उत्तरी राज्य की राजधानी था जहां वे बाल देवता की उपासना कर रहे थे। मीका अध्याय एक पद पांच और छह। और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं है? परमेश्वर घोषणा कर रहा है, इस कारण मैं समरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड़ में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा। ये वे इमारतें हैं जो फाउंडेशन तक नष्ट कर दी जाएंगी। आज यदि आप यरूशलेम से होकर जाएं, शकेम को पीछे छोड़कर मेगिदो की ओर बढ़े, तो आप एक बहुत सुंदर घाटी में पहुंचेंगे। उस घाटी में एक पहाड़ी है वही समरिया है। ये पहाड़ी जैतून के और हर तरह के फल वाले पेड़ों से भरी है, लेकिन यदि आप मुख्य सड़क से मुड़कर समरिया की ओर बढ़े तो आपको एक द्वार मिलेगा जो रोमी काल में कभी शहर का मुख्य द्वार था, और फिर उसके साथ वाली सड़क के दोनों ओर रोम के खंभे मिलेंगे। कारण यह है कि समरिया का शहर रोमियों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर आप आहाब और ओमरी के महल देख सकते हैं। ये महल कभी हाथी दांत के सामानों से सजे होते थे और दर्शनीय स्थान थे। समरिया का शहर उस पहाड़ी पर बसा हुआ एक भव्य शहर था। वे सोचते थे कि वे अजय हैं, फिर भी परमेश्वर ने समरिया के विनाश की भविष्यवाणी की। आप वहां खड़े होकर देख सकते हैं कि उन्होंने पहाड़ पर से पत्थर लुढ़काए। आप मलवा देख सकते हैं और ये भी कि भविष्यवाणी कैसी पूरी हुई, परमेश्वर ने कैसे नींव को उखाड़ दिया। समरिया में आहाब के महल और ओमरी के महल की उखड़ी हुई नींव आज भी उस पर्वत पर दिखाई देती है। आप आज वहां जाकर इस भविष्यवाणी की परिपूर्णता को देख सकते हैं। ये मैदान में लगे एक ढेर के समान है, वो नष्ट हो चुका है। आज के दिन तक वो मलबे के ढेर सा पड़ा है। शहर की नींव उखाड़ी जा चुकी है। मीखा अध्याय 1:7-9 उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी, और जो कुछ उसने चिनाला करके कमाया है वो आग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उसको संचय किया है, और वो फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लूटा हुआ सा नंगा चला फिरा करूंगा, भविष्यद्वक्ता घोषणा करता है। मैं गीदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शतुर्मुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव ये समरिया और उसकी बुराइयां असाध्य है, और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी। असल में मूर्ति पूजा दक्षिणी राज्य में भी फैलने लगी थी, और उन्होंने जंगलों में और ऊंचे स्थानों में मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। मीखा अध्याय 1:9-10 वरन वो मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। अशूरों के आक्रमण की बात, गत नगर में इसकी चर्चा मत करो। गत नगर पिलिस्तीन का मुख्य शहर था। जब दाऊद शाऊल की और योनातन की मौत पर शोक कर रहा था, तब उसने भी ठीक यही बात कही थी, गत नगर में इसकी चर्चा मत करो, दुश्मनों द्वारा उनके दुर्भाग्य पर आनंद किया जाए। वे इसे कभी स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा ही हुआ भी था। परमेश्वर के लोगों के दुर्भाग्य पर आनंद मनाना पिलिस्तियों का स्वभाव था। आपको याद है जब शिमशोन को वे अपने दागोन नामक देवता के घर में लाए थे, तब उनका प्रमुख उद्देश्य उसका तमाशा बनाना और उसकी असहाय अवस्था का मजाक उड़ाना था। उसका कहने का अर्थ ये था कि इस बात की चर्चा मत करो, क्योंकि ये बात यदि गत नगर में पहुंच गई तो वे परमेश्वर के लोगों के कष्ट पर आनंद करेंगे, अतः गत नगर में इसकी चर्चा मत करो। अब यहां वो शब्दों का अलंकारिक उपयोग कर रहा है जिसे आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इब्रानी भाषा का ज्ञान हो। वो कहता है, मीखा अध्याय 1:10 में लिखा है, और मत रो, क्योंकि बेत आपरा का मतलब है रोने का शहर। इसलिए वो कहता है, रोने के शहर में मत रो, या अपरा में नहीं, आपरा का अर्थ धूल है, और इसलिए वो कहता है मीका अध्याय 1:10 के अंत में, बेत आपरा में धूली में लोट पोट करो, मत रो, बेत अपरा में धूली में लोट पोट करो। शापीर का मतलब है सुंदर, लेकिन यहां अंतर है। मीका अध्याय 1:11, हे शापीर की रहने वाली, नंगी होकर निर्लज चली जा, सनान के रहने वाली नहीं निकल सकती। सनान का अर्थ है आगे बढ़ जाना, कहने का अर्थ है कि सनान के निवासी शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मीका अध्याय 1:11-12, बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली, मारोत का अर्थ कड़वापन है। मीका अध्याय 1:12-13, तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। एक बार फिर अशूर का आक्रमण। हे लाकिश की रहने वाली, लाकिश घोड़ों का शहर था। मीका अध्याय 1:13 में आगे लिखा है, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ। लाकिश गढ़ वाले शहरों में से एक शहर था, जिससे अशूरों ने आक्रमण करके ले लिया था, परंतु परमेश्वर के बीच में आ जाने के कारण अशूर यरूशलेम को नहीं ले पाए थे। मीका अध्याय 1:13-14, क्योंकि इसराइल के अपराध तुझी में पाए गए, इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से, अकजीब का अर्थ है झूठ। मीका अध्याय 1:14 में आगे लिखा है, इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे, इसलिए झूठ के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। इस विशेष गदांश में मीका ने शब्दों का अति उत्तम अलंकारिक उपयोग किया है। मीका अध्याय 1:15, हे मारेशा के रहने वाले, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इसराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुलाम में आना पड़ेगा। वो शोक करने के संबंध में बात करता है जो उनके सिर मुंडाने से प्रकट होता था। वो शोक करते समय ऐसा ही करते थे कि वे अपना सिर मुंडा लेते थे और फिर कुछ समय बालों केशों को बढ़ने देते थे। फिर 30 दिन के समय में जितना भी बाल बढ़ता था उसे वे काटकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। परमेश्वर की भेंट के रूप में वे इसे जलाते थे और यही उनके शोक करने का चिन्ह होता था। वे आज भी ऐसा ही करते हैं। यदि परिवार में कोई मौत हो जाए तो वे 30 दिनों तक दाढ़ी नहीं बनाते, परंतु इसराइली सामान्यतः दाढ़ी रखते हैं, जैसे रबी लोग। परंतु हमारे कुछ मित्र हैं जिनके पास जब हम इसराइल भ्रमण में मिलने जाते हैं तब पाते हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है। इसका कारण यही है कि उनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, अतः वे सिर और दाढ़ी मुंडा लेते हैं, और 30 दिन पश्चात जो बाल केश बढ़ जाते हैं उन्हें फिर से मुंडाकर वे परमेश्वर को बलि चढ़ा देते हैं। ये उनके विलाप का चिन्ह है। मीका अध्याय 1:16, अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सर मुंडा, क्योंकि लड़कों का वध हुआ है। मीका अध्याय 1:16 में आगे लिखा है, वरन अपना पूरा सर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं। लड़कों की हत्या हो गई है, जिनकी हत्या नहीं हुई उनको बंधुआ बनाकर ले जाया जा चुका है, अतः ये उनके लिए शोक का समय था।